نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے جو ہم سب گزار رہے ہیں جس طرح ہر نعمت ایک خاص وقت تک کے لیے ہمیں ملی پھر چھن جائے گی اسی طرح زندگی کی اور وقت کی جو نعمت آج میرے اور آپ کے پاس ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گی ہر آنے والا دن ہمیں اپنی واپسی کی خبر دیتا ہے کہ تم نے اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنا تم ختم ہو جاؤ گے تم فنا ہو جاؤ گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا جب میں ختم ہو جاؤں گی تو میرے بعد کیا ہوگا یہ سوال اکثر لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے یہ سوچ کے کہ میرے بعد میرے پیچھے کیا ہوگا مادی چیزوں کا حساب لگا کے تو سوچ لیتا ہے کہ یہ بچوں کے کام آئیں گی یہ گھر والوں کے کام آئیں گی یہ بھائی بہنوں میں بڑھ جائیں گی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پریشان رکھتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے کل جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمارے پیچھے ہماری کیسی یادگاریں ہوں گی کیسی نشانیاں ہوں گی اور اس کا اندازہ تو دنیا میں ہی لگنے لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اپنے تذکروں کو سننے لگتے ہیں کسی کے تذکرے اللہ کی یاد والے ہوتے ہیں اور کسی کا تذکرہ شیطان والا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے سورت یاسین کی ایک آیت تلاوت کی شروع میں اور میرا خیال ہے کہ اور میرا گمان بھی یہی ہے کہ جتنی ساتھی بیٹھی ہیں ان میں سے 98% کو سورت یاسین زبانی یاد ہوگی زبانی نہیں بھی یاد تو کثرت سے پڑھتے ہیں بڑی محبت ہے اس سورت سے ہم لوگوں کو اور کسی کے گھر میں جا کے آپ قرآن پاک کھول لیں تو عموماً یہ صفحے کثرت استعمال کی وجہ سے رنگ بدل چکے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو 70 یا 72 دفعہ بھی پڑھتے دیکھا کوئی وظیفوں کے طور پہ کرتے ہیں کوئی اپنی اپنی مرضی کے طریقوں سے بھی کرتے ہیں تو چلے آئیے آج کی اس نشست میں اس کی صرف ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور پھر اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا کئی بار کے قرآن پاک کے ختم کیے جانے سے زیادہ بھاری چیز ہے پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے مزید باتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نحیی الموتی بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو ایک خبر ہے کہ آج جو دنیا میں ہیں کل وہ مریں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہی مردہ نہیں رہیں گے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو وہ اپنے پیچھے چھوڑیں گے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے کہنے کو ایک آیت ہے لیکن انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے आज हम दुनिया में जो जी रहे हैं तो हम दो तरह के अमल करते हैं। एक वो अमल है जो हम यहाँ मौजूद हैं और आखिरत की उम्मीद और आखिरत की नियत पे करते जा रहे हैं, वो सब हमारे नामे आमाल में जमा हो रहे हैं। सोचिए सर, अपनी नेकियाँ, नमाजें, रोज़े, सदका, खैरात इसी नियत से करते हैं ना कि कल जब मरेंगे तो आगे नजर आएंगे, जब जाएंगे तो फिर वहाँ पे मिल जाएंगे। इंसान जो अमल करता है वो अल्लाह ताला के पास जाता है। मैंने जो बात कही इसको गौर से फिर सुने। मैं जो अमल यहाँ करती हूँ वो मेरे रब के सामने पेश किया जाता है। क्या इस जुमले को सुन के आपके दिल में कुछ गर्दिश, कोई हरकत, कोई खौफ आया? हम अपना जायजा ले सकते हैं क्या मेरे अमल इस काबिल होते हैं कि जब रब के सामने पेश किए जाएं तो उसको खुशी हो? गुनाहों को तो एक तरफ कर दें, सिर्फ पढ़ी हुई नमाजों का हाल देख लें। जो नमाज मैंने यहाँ आने से पहले पढ़ी, क्या वाकई इस काबिल है कि अल्लाह के सामने पेश की जाए? नेकियों में भी फिक्र है, लेकिन जो गुनाह और जो नाफरमानी के काम हम करते हैं वो अल्लाह ताला के पास जाते होंगे तो कैसे लगते होंगे? इसलिए आज के बाद कोई काम करें तो शऊर के साथ करें, कुछ भी करें, दुनिया में करें, किसी इंसान के साथ मामला करें, माँ के साथ मामला करें, बाप के साथ मामला करें, बच्चों के साथ मामला करें, एक लम्हे के लिए सोच लें कि ये जो मैं आज आगे भेज रही हूँ ये कल मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे रब के पास जाता है। फिर हमारे अमल जो होते हैं ना, ये जाते कैसे हैं? फरिश्ते लिखते हैं। सूरह इन्फितार में आता है, इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। बेशक तुम्हारे ऊपर दो बड़े बाइज्जत फरिश्ते हैं, वो तुम्हारे हर अमल को लिख लेते हैं। व इन अलैकुम लहाफिजीन, जो निगेबानी करते हैं तुम्हारे बोले बोले लफ्ज़ों की हिफाजत करते हैं। तुम्हें याद नहीं कि तुमने एक हफ्ता पहले क्या लफ्ज़ बोले थे इस वक्त यहाँ बैठ के या कहीं और बैठ के, लेकिन फरिश्तों ने उसको नोट कर लिया, उनको गलती नहीं लगती, फौरन लिख लेते हैं। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीत। कोई लफ्ज़ नहीं जो बोलने वाले की ज़ुबान से निकले और लिखने वाला उसको फ़ौरन न लिखे। एक लम्हे के लिए सोचिए, मेरा बोला हुआ हर लफ्ज़ लिखा जाता है? मैं जो कहती हूँ वो लिखा जा रहा है? मैंने क्या इस शऊर के साथ कोई एक दिन भी गुजारा? कितना बोलते हैं, और आज के दौर का तो फैशन है खूब बोलो, अपने आप को डोमिनेंट करो। टॉकेटिव होना स्मार्टनेस की अलामत समझी जाती है, जो ना बोले लोग उसको बुद्धू समझते हैं। लेकिन याद रखिए, जिनको ये एहसास होता है कि मेरा बोला हुआ एक एक लफ्ज़ कल क़यामत के दिन तोला जाएगा, तो वो सोच के बोलते हैं। उस एक खातून की तरह के जो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला अलैह को मिली, इमाम बुखारी के उस्तादों में से एक उस्ताद थे, एक जगह कहीं से गुजरे तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा को देखा, अकेली बैठी है, जाके सलाम की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्ला। जवाब में खातून कहती हैं, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। सूरह यासीन की आयत पढ़ दी कि अल्लाह ताला जन्नतियों को जो सलाम भेजेगा उसकी बात है। कहने लगे कि अम्मा तुम यहाँ कैसे आई, कहाँ हो, ऐसे क्यों बैठी हो? कहने लगी, मैं युतलिल्लाहु फला हादिया लहा। फिर कुरान पाक की एक और आयत पढ़ दी कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। वो समझ गए कि ये औरत रास्ता भटकी हुई है। कहने लगी, आए अम्मा आप कहाँ से हैं? तो कुरान पाक की आयत पढ़ती हैं, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। तो वो समझ गए कि ये बैतुल मक़दस से है, मस्जिद अक्सा से है। अब जो बात वो करते हैं वो खातून कुरान की आयत में जवाब देती हैं और कुछ नहीं बोलती। पता चला कि ये भटक चुकी हैं। पूछा, किधर हैं?
मतलब उन्होंने कुरान की आयतों से ये साबित कर दिया कि काफले से बिछड़ गई हूँ। सूरह यूसुफ की एक आयत, उसमें काफले का जिक्र है, वो आयत पढ़ के उन्होंने बता दिया कि मैं काफले से बिछड़ गई हूँ। कहा ठीक है, आप मेरे ऊँट पे सवार हों, मैं साथ पैदल चलता हूँ और आपको आपके काफले तक पहुँचा देता हूँ। यही हुआ, उसके साथ तकरीबन 8 दिन का सफ़र किया और उनको पहुँचाया। अब वहाँ पहुँच गई जहाँ काफला था, तो कहने लगे कि अब तुम अम्मा, तुम कैसे, मुझे कैसे पता चले कि किसको बुलाऊं? तो उन्होंने ऊंची से कुरान पाक की एक आयत तिलावत की जिसमें 3 नबियों के नाम हैं, मूसा, इब्राहिम और ईसा। ऊंची आवाज से ये आयत पढ़ी तो काफले में से 3 जवान मर्द निकल के आए, वो तीनों इस औरत के बेटे थे। बेटों को देखा, मिली तो कहने लगी बेटों को, सूरह कहफ की आयत पढ़ के कहने लगी, तुम में से कोई है जो पाकीज़ा खाना लेके आए, इनको खिलाए? बेटे गए, जल्दी से खाना लेके आ गए, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक है उनके पास, खाना रख के कहती है, कुलू वशरबू हनी अम बीमा असलफ तुम फिल या मिल खालिया, खाओ और पियो उन नेकियों के बदले में जो तुमने पिछले दिनों में मेरे साथ किए हैं। हालांकि ये आयत जन्नत में जन्नतियों को कही जाएगी, जब वो खाने पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये तुम्हारी नेकियों के बदले में है। खैर, उन्होंने खाना खाया, बाद में उनके बेटों से कहने लगे कि मैंने पिछले 8 दिन में इस खातून को कोई लफ्ज कुरान के सिवा बोलते हुए नहीं देखा। तो वो कहने लगे कि आप पिछले 8 दिन की बात करते हैं, हमने पिछले 40 साल में अपनी माँ के ज़ुबान से कुरान के सिवा कोई लफ्ज़ नहीं पुकारा। क्यों? कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, कहने वाला भी सोचे और सुनने वाले भी सोचे, कितना बोलते हैं हम और क्या बोलते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ना बोलेंगे तो कोई हमें जीने नहीं देगा। लेकिन हकीकत ये है कि जिस इंसान को इस चीज़ का यकीन हो जाए कि मेरा एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है, वो सोच के बोलेगा। और बहुत बोलना को खूबी की बात नहीं, जितना बोलेंगे उतनी गलतियां खाएंगे। एक और वाक्या याद आता है ज़्यादा बोलने की बात पे और दीन पे अमल करने के रास्ते में। एक शख्स किसी बाग से गुजरे, देखा कि दरख्त से एक फल गिर के बाहर गिर चुका है, तो दिल में ख्याल आया कि ये मालिक को तो पता ही नहीं चलेगा, उसका सेब था कोई, तो उसको उठाया कि अंदर जाके मालिक का घर है, उसको कहता हूँ कि आपके बाग का दर सेब है, इसको दे देता हूँ। अंदर गए और मालिक को कहा कि जी ये आपका सेब गिरा हुआ था बाहर, मैं आपको देने आया हूँ। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं तुम तो चोरी की नीयत से तुमने पकड़ा होगा और तुमने मुझे देख के वापस करने लग गए। इन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो आपकी चीज़ थी, आपको देने आया। किस्सा मुख्तसर। मालिक ने कहा, नहीं मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें सजा दूंगा। कहने लगे, अच्छा सजा देनी है तो फिर अभी दे ले, आखिरत की सजा से तो बेहतर है कि दुनिया की सजा मिल जाए, आप बोलें जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। वो बाग वाला कहने लगा कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, जो लंगड़ी भी है यानी हैंडीकैप है, चल नहीं सकती, गूंगी भी है बोल नहीं सकती, और अंधी है देख भी नहीं सकती, यानी बिल्कुल एक डल और लड़की है, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ये शख्स कहने लगे कि अब जाहिर है कि मैं आपका मुलजिम हूँ इस वक्त, तो बजाय इसके कि क़यामत के दिन मुझे आप पकड़ें, बेहतर है कि आप मुझे दुनिया में सज़ा दे दें, तो मैं तैयार हूँ, मेरी शादी कर दें उसके साथ। खैर, बाप ने बच्ची के साथ उस लड़के की शादी कर दी। उस वक्त की बच्चियाँ भी कैसी थी, ये सच्चा वाक्य है, मुस्लिम तारीख किताब है जो सुनहरे औराक और इस तरह की बहुत सारी किताबों में ये मिल जाएंगे आपको वाक्यात। बच्ची भी मान गई, खैर अब शादी हो गई। अब जब अपनी बीवी के पास जाने वाले थे तो दिल में कई वसवसे उठ रहे थे, क्या करूं, कैसे जवाब, क्या कहूंगा, वो मेरी सुनेगी नहीं, मेरी बोलेगी नहीं, मैं कैसे उसको बात करूंगा। खैर जब कमरे में गए तो जाके सलाम किया। अब जब अस्सलाम वालेकुम किया तो बड़ी प्यारी मीठी सी आवाज़ में किसी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बड़े हैरान हुए कि बाप ने तो कहा था ये बोलती नहीं है, बोल नहीं सकती, तो ये तो बोल रही है। खैर जब देखा उसका घूंघट उलट के, तो बड़ी खूबसूरत लड़की, कोई ऐब नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक ठाक, और मामला बिगड़ गया। कहा, ये क्या हुआ, तुम्हारे बाप ने झूठ क्यों बोला मेरे साथ? फिर उस बच्ची ने कहा कि मैं पहले आम जैसे दुनियादारों की तरह थी, लेकिन जब मैंने कुरान पाक में ये बात सुनी कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, सूरह काफ़ की आयत है कि जो भी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है फरिश्ते उसको लिख लेते हैं, तो मैंने उसके बाद बात करना ही फालतू छोड़ दिया। मैं इतना कम बोलती थी कि मेरे घर वालों ने मुझे गूंगा कहना शुरू कर दिया, जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, इसको तो बात ही नहीं करनी आती। फिर कहने लगी कि मैंने कुरान पाक में आयत पढ़ी कि वकर्न फी बुयूतिकुन, अपने घरों में करार पकड़ो, औरतों को हुक्म है ज़्यादा बेकार बेमकसद बाहर ना फिरो। कहने लगी उसके बाद मैंने घर से ज़्यादा निकलना छोड़ दिया। और जब मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल मोमिनात, ईमान वालियों को कहा गया कि यग़दुत्न मिन अबसारिहिन, अपनी निगाहों को नीचे रखो, झुका के रखो, आंखें उठा उठा के ना फिरो, तो उसके बाद से मैंने बिल्कुल ही किसी को देखना ही छोड़ दिया, यानी अमल शुरू कर दिया कुरान पे, तो मेरे घर वालों ने मुझे अंधी का लकब दे दिया। तो कहने लगा मेरे साथ शादी क्यों की तुम्हारी, सच कह देता तो क्या था। कहने लगी कि जब आपने वो बाग में से वो फल गिरा हुआ उठा के मेरे बाप को दिया, तो उनको आपके ईमान का यकीन हो गया कि आप बड़े ईमानदार हैं, तो उनको लगा कि मेरे लिए आपसे अच्छा शौहर कोई और नहीं हो सकता। तो वैसे तो हो सकता है आप ना मानते, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात करके तो कहा। तो किस्सा मुख्तसिर क्या है अजीज साथियों, कि इंसान की आंखें, उसके कान, उसकी जुबान, एक एक चीज कल क्यामत के दिन उसके बारे में सवाल होगा, कहाँ इस्तेमाल की, क्या किया, तुम्हारा इसके साथ मामला कैसा था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हारी हर चीज को लिख रहे हैं, वह नक्तुबु, और हम लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो हम कहते हैं वो लिखा जा रहा है। हम सुबह उठते हैं ना, तो एक खाली किताब हमें दे दी जाती है, उसका एक खाली सफ़ा खोल दिया जाता है, फिर हम उसमें अपनी मर्जी से लिखते हैं, कब सो के उठे, क्या खाया, क्या बोले, क्या सोचा, क्या देखा, क्या लिखा, सारा दिन फरिश्ते लिखते हैं। जैसे दुनिया में भी कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है ना, कुछ लोग खुद ही वो काम करने लगते हैं जो फरिश्ते पहले ही कर रहे हैं, मैं उठी, मैंने चाय पी, मैंने अखबार पढ़ी, मैं ये किया वो किया, ये काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन शौक होता है लोगों को अपनी आप सोचने का। अब जब हम सारा दिन लिखते रहते हैं ना, फिर जब रात होती है, पूरा एक दिन गुजर जाता है, तो उसका सफ़ा पलट दिया जाता है, और फिर अगले दिन एक नया सफ़ा, खाली प्लेन ब्लैंक। कोई हो सकता है किसी का 6-6 घंटे सो के गुजर जाता होगा, किसी का 3-3 घंटे अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ें देखने के नाम पे होगा, किसी का घंटों टेलीफोन की गीबत पे होगा, किसी का दिल दुखाना, किसी की बुराई करना, और बिलआखिर वो फिर किताब बंद होती है, और इसी तरह एक दिन आएगा कि उस किताब का आखिरी सफ़ा होगा और हमारी किताब ज़िंदगी बंद हो जाएगी। अभी तक कितने सफ़े गुजर चुके हैं हम गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल के 365 दिन लगा लें और उसमें से एक एक दिन को गिन लीजिए अपनी उम्र के हिसाब से, सालों को गिरें तो लगा, महीनों को, दिनों को भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पीछे कितने दिन हैं। हमें से तो किसी को ये भी नहीं पता कि हमारा आज ही आखिरी सफ़ा होगा, किसी को नहीं पता ना। अचानक मौत आ जाती है, जवानों को भी आ जाती है, बूढ़ों को भी आ जाती है, बिस्तर पे ठीक ठाक सोते हैं, रात को उठ नहीं सकते, सुबह में आ सकती है मौत, अचानक मौत है, और वो किताब जिंदगी हमसे छीन ली जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि ठहर जाओ जरा, अभी कुछ और लिखना है, कुछ और करना है, थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ा मौका दे दो, ख़त्म। आप में से स्टूडेंट्स नहीं हैं जो बच्ची हैं, मैं उनके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इम्तिहान देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम होता है ना, 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, जब वो टाइम ख़त्म होने के करीब होता है तो क्या होता है, वार्निंग्स देते हैं ना, 10 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट लेफ्ट, 2 मिनट लेफ्ट। अगर कोई उस पूरे टाइम के बीच में ना लिखे तो बाद में क्या होगा, छीनने वाला छीन लेगा। किसी को हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, लेकिन मौत का फरिश्ता जब आएगा तो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, और इंसान चीखता रह जाएगा, लौला खरतनी इला जलन करीब, मुझे थोड़ी सी मुद्दत तो दे दो, इतना सा भी वक्त नहीं दिया। फिर क्या करोगे? सारी जिंदगी गुजर गई, तुमने कुछ क्या नहीं किया जो तुम अब करोगे, तो इंसान दुनिया से जाने वाला क्या कहता है? असद्दक व अकुम मिन सालहीन, सदका करूँगा, कुछ डोनेशन दूंगा, चैरिटी करूँगा, कुछ दीन के नाम पे खर्च करूँगा, क्योंकि मेरे बाद तो लोगों ने ना जाने मेरे माल को कहाँ इस्तेमाल करना है, मैं इसका कोई अच्छा हल इस्तेमाल कर लूँ। और क्या करोगे? व अकुम मिन सालहीन, नेक बनूंगा, बहुत सारी नेकियां मैंने पोस्टपोन की हुई थी ये सोच के कि अभी तो जवान हूँ, ज़रा बूढ़ी हो जाऊंगी फिर करूंगी, अभी तो नहीं, ज़रा शादी हो ले फिर ये नेकी करूंगी, अभी हज कर लूँ फिर ये गुनाह छोड़ूंगी, अभी ज़रा बूढ़े हो ले फिर करेंगे। और इसी दौरान मौत आ गई। हम सब देखे तो हमने कितनी नेकियों के इरादे किए हुए हैं, कई कई साल से इरादे किए रखते हैं कि ये नेकी करूंगी ये करूंगी, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? वजह क्या है? अभी और मोहलत, अभी और मोहलत। लेकिन फरमाया कि जब मौत आती है तो ज़रा सी भी मोहलत नहीं मिलती, एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती। अभी मैं किसी सिटी में थी तो वहाँ मुझे किसी ने बताया कि आज किसी की सडन डेथ हुई है, यंग आदमी थे कोई, घर में दावत है रात को और अपने इन लॉज को मिलने गए हैं, और कहा कि लॉन के अंदर जो छलाते हैं घास काटने के लिए उसकी गैस लेने गए हैं घर से, और वो लेके तो किसी और रिलेटिव्स के घर में रुके हैं कि मैं उनको मिल लूँ। और उसके बाद कहते हैं कि घर से बाहर एकदम जब उनकी नज़र पड़ी तो उनकी गाड़ी को आग लगी हुई है, धुआं निकला हुआ है। खैर वो गए, उन्होंने जाके कोशिश की, अब अल्लाह ही जाने क्या हुआ है, वो अंदर वो गैस फटी है, उनकी गाड़ी फटी है और वो अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल सके, और सबके सामने देखते देखते जल के राख हो गए, ना गाड़ी बची ना मर्द बचा, बीवी दो बच्चों के साथ छोटे, और उसी के घर में रात को दावत थी। ये है जिंदगी, हम किस भूल में कब तक जिएंगे, कितने दिन हैं, आखिर हम अपने इस वक्त का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी प्यारी दुनिया दी, इतनी प्यारी नेमतें दी, इतने प्यारे मौके दिए। आज दुनिया के जिस हिस्से में हम बैठे हैं, लोग तो इधर आने की तमन्नाएं करते हैं, ना हमारे बिजली जाती है, ना हमारे गैस की कमी, गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, लिबास नरम से नरम, बिस्तर आरामदेह से आरामदेह, गाड़ियाँ लग्जरियस, और क्या चाहिए? क्या इसके बाद भी नेमतों का हक अदा नहीं होगा? कल क़यामत के दिन जब मालिक पूछेगा कि बताओ दुनिया में जो नेमतें थी उसको इस्तेमाल करके किया क्या, क्या जवाब देंगे? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे नेमतों का सवाल होगा। हम तो एक दिन भूखे नहीं रहे, हमारी ज़िंदगी में तो एक घंटा प्यास का गुजर जाए तो हमें अपने ऊपर रोना आने लगता है। हमारे पास एक वक्त की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो दूसरों के पास मौजूद है तो हम कहते हैं कि हमसे भी ज़्यादा बुरी किस्मत होगी। शौहर कोई चीज़ प्रोवाइड ना करे तो वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगने लगता है, हमारा मिजाज उसके साथ ठीक नहीं होता, हम तो उसको नखट्टू होने का ताना देने लगते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन क्या होगा जब इंसान से उसकी नेमतों का पूछा जाएगा? सिर्फ नेकियाँ ही नहीं तुलेंगी, नेमतें भी तुलेंगी। ये जो माँ कद्दमू व आसारहुम की बात आगे आ रही है, उससे पहले जो कहा कि वह नख्तबू, हम लिख रहे हैं, तो हमारी नेकियाँ भी लिखी जा रही हैं, हमारी बदियाँ भी लिखी जा रही हैं, और हमारी नेमतें भी लिखी जा रही हैं। बस लोगों का हिसाब इस तरह से होगा कि जिंदगी भर जो नेमतें दी, ब्लेसिंग्स थी, बाउंड्रीज थी, वो रखी जाएंगी, और दूसरे पलड़े में उसके गुड डीड्स रखे जाएंगे। अगर तो गुड डीड्स यानी नेकियाँ जो हैं वो भारी हुई, नेमतें थोड़ी हुई, तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर नेमतें ज़्यादा थी और गुड डीड्स कम थे, हल्का वजन होगा तो पकड़ होगी, पूछ होगी। एक बनी इसराइली रिवायत है जो सही रिवायत है, लेकिन उसके बारे में नबी सल्लम ने यही कहा कि वला तुसद्दिकु वला तुकज़्ज़िबु, ना उसको झुटलाओ ना मतलब उसको झुटलाओ नहीं। तो बनी इसराइल में एक शख्स था, उसके अल्लाह ताला ने उसको कहीं दूर दराज पैदा किया। कहते हैं कि उसके पास एक दरख्त था अनार का, वहाँ एक अनार उगता, सुबह को एक अनार खाता और एक शाम को खाता, और एक पतला सा उंगली के बराबर धार जितना बहता हुआ एक चश्मा था जहाँ से पानी पीता। दिन सुबह रोज़ा रख लेता और शाम को रोज़ा इफ्तार करता और रात इबादत में गुजारता। 500 साल की उम्र उसको रब ने दी। और ज़ाहिर है कि आप देखिए कि उसमें गुनाह क्या होंगे, ना रिश्तेदारियाँ, ना कुछ, ना किसी के हक तलफियाँ। उसने अल्लाह ताला से तीन दुआएं की थी, कहने लगा, एक मेरी ख्वाहिश क्या है कि मुझे मौत जब आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ, और दूसरी ये है कि मट्टी मुझे खाए ना, यानी मैं क्यामत के इसी जिस्म के साथ उठना चाहता हूँ। इसी तरह गालिबन तीसरी कोई और दुआ भी थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने उसकी ये बात पूरी कर दी, उसको मौत आई, मरा, और उसकी जब मट्टी में था वो, तो अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा किया और फरिश्तों से कहा कि ये मेरा बंदा बड़ी इबादत करके आया है, तुम इसको ऐसे ही जन्नत दे दो, मैं खुशी से इसको जन्नत देता हूँ, हिसाब नहीं लेता। लेकिन उस शख्स के दिल में ख्याल था, कोई रौनक नहीं थी, लेकिन एक होता ना ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने तो इतनी नेकियाँ की हैं, अल्लाह ताला मेरा हिसाब लीजिए। जैसे जिसने बहुत अच्छे पेपर में नंबर पेपर दिया हो, सारे सवाल ठीक हो, तो वो कहता है, नहीं मुझे ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत नहीं, आप मेरे पेपर चेक करके दें। जब उसने कहा कि ठीक है मेरा हिसाब लें, तो कहा ठीक है। फरिश्तों से कहा कि एक पलड़े में इसकी नेमतें डाल दो और दूसरे में इसकी नेकियाँ डाल दो, अगर नेमतें ज़्यादा हैं तो फिर पकड़ होगी, अगर नेकियाँ ज़्यादा हैं तो फिर ठीक है। अब आप देखिए कि एक पलड़े में उसकी 500 साल की बातें, वो रोज़े और वह तहज्जुद और इबादत, और दूसरे पलड़े में नेमतों में से एक नेमत डाली है भी। उसको अल्लाह ताला ने क्या नेमतें दी थी? रिवायत में आता है कि दूसरे पलड़े में सिर्फ उसकी एक आँख रखी थी और आँख का वज़न बढ़ गया और 500 साल की नेकियाँ ऊपर चली गई। कहा कि इसको जहन्नुम में डाल दो, इतने साल की इबादत से सिर्फ एक आँख का हक नहीं अदा कर सका। फिर उसको होश आई कि मैंने क्या किया। कहने लगा, नहीं अल्लाह मुझे तेरी रहमत चाहिए, तो मुझे माफ़ कर। तो मामला तो बड़ा संगीन है। हम न जाने किस सर्टिफिकेट को लेने के बाद मुतमईन होके बैठे हैं कि जन्नत हमसे कौन छीनेगा। दुनिया में कितनी दफ़ा चीज़ें हमारे हाथों में आई भी निकल जाती हैं, हमारी सुस्ती की वजह से कितनी कामयाबियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हमारी लापरवाही की वजह से कितने नुकसान हमें भुगतने पड़ते हैं, कितनी दफ़ा हमारी फ़्लाइट मिस होती है अपने लेज़ीपन की वजह से। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर जन्नत मिस हो गई तो क्या होगा, वहाँ का मामला पलट गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए शऊर की ज़िंदगी, सिर्फ गुनाहों से बचना ही नहीं बल्कि नेकियाँ भी करनी है। नेकियों के मौके गंवा देना इंसान की बदबख्ती की बात होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम, हम लिख रहे हैं जो तुम आगे भेज रहे हो, नेकियों की सूरत में, बदियों की सूरत में, माल लगा के तुम जो करते हो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम वक्त लगाते हो अल्लाह के रास्ते में, तुम सेहत लगाते हो, तुम इल्म लगाते हो, तुम उसकी किताब को सीखते हो, ये तुम्हारी नेकियाँ, ये तोहफे बन के मेरे पास आ रही हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो तुम अपने सामने आगे भेज रहे हो, फरिश्ते तो वो भी लिख रहे हैं जो कि तुम पीछे छोड़ के जाओगे। वह आसार हूँ, उनके असर पीछे जो छोड़ा। अब ये आसार क्या हैं? दो तरह के होते हैं। एक आसार क्या है? जहाँ हम बैठ के नेकी या बदी करते हैं उन जगहों पे हमारे प्रिंट्स लग जाते हैं, जैसे फिंगर प्रिंट्स है ना। आप यहाँ बैठी हुई हैं, बात सुन रहे हैं, अगर ये महफिल बर्खास्त हो जाए और किसी को कहा जाए कि एग्जैक्टली वो जगह जहाँ बैठी थी उसी जगह पे बैठें, या ये सारी चेयर्स मिक्स कर दी जाएं और कहा जाए कि ढूंढे ज़रा जिस चेयर पे आप बैठी थी वो कौन सी है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी पहचान सके। गेस तो कर सकते हैं लेकिन 100% ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ईमान होना चाहिए कि ये ज़मीन के टुकड़े जहाँ आप पे बैठी हैं, इन्होंने आपके प्रिंट्स ले लिए। ना सिर्फ ये ज़मीन, इसके नीचे की 7 ज़मीनें क्यामत के दिन गवाही देंगी कि अल्लाह यहाँ बैठ के इन्होंने तेरी बात को सुना था, यहाँ बैठ के इन्होंने कलाम पढ़ा था, यहाँ बैठ के ये नमाज पढ़ा करती थी, इस कुर्सी पे बैठ के घंटों ये तेरी किताब को लिखती और लिखाती और पढ़ती और पढ़ाती थी। ये चीज़ें गवाहियाँ देंगी इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ कायनात के अंदर हमारे प्रिंट्स ले रही है। अब देखिए कि जैसे फिंगर प्रिंट्स होते हैं ना, हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आज भी इतने तरक्की याफ्ता दौर में लोगों की तहकीक करने के लिए या उनको देखने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। इसी तरह क़यामत के दिन हमारी नेकियों के प्रिंट्स होंगे और हमारी बुराइयों के प्रिंट्स होंगे। जिस तरह अच्छी चीज़ के प्रिंट्स हैं, इसी तरह बुरी चीज़ों पे भी हमारे प्रिंट्स लग रहे हैं। हमने कोई गलत चीज़ पकड़ी, उसको देखा, उसको इस्तेमाल किया, एक एक चीज पे हमारा प्रिंट लगेगा। किसी ने कहीं से एक शराब की बोतल निकाली, उसको केस से निकाला, उसको साफ किया, उसको फ्रीजर में डाला, ग्राहक आया उसको खोल के दी, उसको चार्ज किया, एक एक चीज पे उसके हाथ लग गए। और क्यामत के दिन ये सारी चीजें बोलेंगी। खौफ नहीं आता इसको सोच के? मेरा है कि अगर इंसान को इस चीज का यकीन हो जाए कि मेरी हर चीज देखी जा रही है, तो वो कभी गलत चीज को हाथ ना लगाए। कितने आराम से दुनिया में लोगों की चीज़ों को हम नुकसान देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। घर में जिस तरह चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के घरों में आके वैसे इस्तेमाल नहीं करते। घर में टॉयलेट पेपर यूज़ करने का जो तरीका होता है, वो दूसरे के घरों में जाके वो नहीं रहता, इसलिए कि कौन देखेगा, कौन पूछेगा। लेकिन क़यामत के दिन एक एक चीज़ होगी। मसलन कोई किसी का नीचे उतरे के, चलो जूते इतने अच्छे हैं, मैं अपना छोड़ो किसी का पहन जाऊँ,
तो बस
आपने दूसरे का जूता पहनना, वो उसका तो क्या गया, $20-25 का जूता चला गया, लेकिन पहनने वाले ने जमीन पे जहां जहां पांव रखे, जमीन के वो टुकड़े गवाहियां देंगे क्यामत के दिन के, अल्लाह यहाँ ये नजायज जूता पहन के आया था। मा कद्दमू व आसारहू, आप दूर दूर से चल के आए होंगे, जमीन के उस हिस्सों पे आपके नक्श लग गए कि ये अल्लाह ताला तेरे रास्ते में निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी के टायर, आपका पैदल चलना, एक एक चीज कल क़यामत के दिन गवाही बनेगी। दिल चाहता है ना कि अच्छी गवाहियां हों। इसी तरह आसार के अंदर एक दूसरी चीज है, आपके पीछे क्या है, हमारे जाने के बाद हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड। और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम चीज आती है वो औलाद आती है, बच्चे। किसी की बहू का, बेटी का इंतकाल हो जाए तो अमूमन बूढ़ी सास रोते हुए कहती है, खुद तो मर गई, ये निशानी छोड़ गई। छोटे छोटे बच्चों को निशानियाँ कहा जाता है। तो आसार क्या है? निशानियाँ। ये बच्चे हमारी निशानियाँ, आज दुनिया में हमारे सामने भी और कल हमारे जाने के बाद। अब ज़रा एक लम्हे के लिए हर एक इर्द गिर्द से खुद को बेनियाज करके सोचे, अल्लाह ना करे इन्हीं हालातों वाक्यात में मेरा अगर इंतकाल हो जाए, मुमकिन है ना? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो मेरे पीछे क्या है, वट आई एम लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जा रही हूँ, क्या मैंने अपनी औलाद को इस काबिल कर दिया है कि मेरे बाद वो कोई ऐसे काम कर सके जो मेरे लिए सदके जारी हो? क्या मेरे बच्चों के अंदर ऐसी आदत तो नहीं परवान चढ़ चुकी कि जो मेरी कब्र में आग लगाने का बायस बन जाए? जिनकी दुनिया बनाते बनाते हमने अपना सुख चैन ख़त्म कर दिया, क्या वो हमारी आखिरत बिगाड़ने के दर पे तो नहीं आ चुके? औलाद इंसान का बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद वो आपको एक नया अकाउंट खोलता है। एक औरत है, वो तन्हा है, हो सकता है ज़िंदगी गफलत में गुजरी, 25, 30, 35, 40 साल तक खूब मन मौजी की, फिर होश आ गया, किताब आ गई ज़िंदगी में, कोई मौका ऐसा आया, तब्दीली आ गई, तौबा की, आइंदा से नई ज़िंदगी शुरू कर ली, इस्लाह हो गई, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि जो खुद तो अपनी इस्लाह कर ले, लेकिन पीछे चार बच्चे ख़राब छोड़ दे, ये तो चार बैड क्रेडिट छोड़े ना अपने पीछे, ये बैड क्रेडिट है। दुनिया में जब कोई बैड क्रेडिट हो जाता है तो लोग उसको मजीद माल नहीं देते, लोग उसको जेल में डाल देते हैं। जब अल्लाह के यहाँ बैड क्रेडिट होंगे तो फिर क्या होगा, सोचने की जरूरत है कि नहीं? और आज का मुसलमान जो जिंदगी गुजार रहा है, जिस तेजी से अपनी रिवायात और अपने दीन और अपने इस्लाम को छोड़ रहा है, क्या हमारे बच्चों में इस्लाम के कोई नक्श भी बाकी हैं? क्या आज की नस्लों के जहन में इस्लाम के बारे में इस्तराब नहीं फैल चुका? मेरे से सवाल करती है एक बच्ची, माँ कहती है मेरी बच्ची ने सवाल करना, मैंने कहा करे, कहने ये खुद करेगी सवाल, मैंने कहा बताइए क्या सवाल है, कहने लगी कि आप बताइए कि इस्लाम शादी करने का हुक्म क्यों देता है, एक लड़की अकेली आज़ाद क्यों नहीं रह सकती? अब उसका तो जो जवाब था, लेकिन मैंने सोचा ये सवाल उठा कहाँ से, जब चारों तरफ आप मुआशरे में मनमौजी जिंदगी गुजारने वालों को देखें, जहां शादी पाबंदियों का नाम हो, जहां अपनी जिंदगी जियो खाओ पियो, और जहां शादी के बगैर सब कुछ मिल जाता, फिर क्या मुसीबत पड़ी है शादी के बंधन में बंधने की? पहले तो ये सवाल नहीं उठते थे। आज नर्सरी स्कूल्स के बच्चे ये पूछते हैं कि बताओ कि गॉड का फादर कौन है, और ये मुसलमान मुल्कों के हालात हैं। आज हमारे मुल्कों में वैलेंटाइन इस तरह से मनाई जाती है जैसे यहाँ वालों को भी नहीं पता होगा कि जिन्होंने ये रसूमात शुरू की। आज जिस तरह क्रिसमस को हमारे मुसलमानों ने मनाना फर्ज समझ लिया, इस तरह तो शायद वो भी नहीं मनाते होंगे। कितनी जल्दी से तब्दीली आ रही है। और मैं जब लोगों के बीच में आती हूँ, देखती हूँ, एक साल एक जगह जाती हूँ, वहाँ कुछ मुसलमानों से मुलाकात होती है, देखा सुना, ठीक एक साल बाद दोबारा आप वहां आते हैं, आप मुसलमानों के लिबास, उनकी हरकतों, उनके तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि आखिर क्यों इतनी जल्दी इल्हाद क्यों आ रहा है हमारे अंदर? इसलिए कि ये शऊर ही नहीं है कि कल क्या होगा। आज हम इस चीज पे तो परेशान है कि हम मर जाएंगे तो बच्चों को पालेगा कौन, आज मर जाएंगे तो कल बच्चों के मुस्तकबिल कैसे बनेंगे, उनकी आखिरत कैसे, आखिरत को तो छोड़े घर कैसे होंगे, शादियां कहाँ होंगी, जॉब्स कैसी मिलेंगी, लेकिन उनके दीन का क्या होगा? आपको पता है कि मुसलमानों की नस्लों में से अब गैर मुस्लिम पैदा होने शुरू हो गए। यानी बड़े फख्र से लोग कहते हैं, यस आवर ग्रैंडफादर वाज मुस्लिम। कहानी आपको सुनाऊं तो फिर तो बेशुमार है, और मेरे से ज़्यादा आप लोगों के पास भी होंगी। लेकिन अगर इस वक्त हम अपने दीन से ना जुड़े, अगर आज हमारी ज़िंदगियों में वही तौर तरीके ना आए जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, तो याद रखिए कि जैसे पिछली कौमें मिटी, अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो औरों को भी मिटा दे। आए दिन अल्लाह ताला की तरफ से सख्तियाँ हम देखते हैं। अपने इर्द गिर्द हम नजरें उठा के देखें तो क्या लगता है कि आज का मुसलमान अल्लाह का कोई पसंदीदा मुसलमान है? कितनी दुआएं होती हैं हरम में, रमजान में देख लीजिए, अल्लाह मुसलमानों की मदद कर, अल्लाह ताला ये कर, मुसलमानों को इज्जत दे, मिल रही है। दिन ब दिन हम नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने दीन को छोड़ दिया। जब कोई कौम अपनी दीन से कटती है ना, अपनी जुबान से कटती है, तो फिर वो अपनी रिवायात से कट जाती है। यानी आप कहीं जाके एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, 10 15 20 लोगों को बिठा के कहें कि चलो कुरान पढ़ो, और सिर्फ यंग्स अगर होंगे तो इल्ला माशाल्लाह कोई है जो आपको पूरा कुरान फ्लुएंटली पढ़ के सुना दे। तर्जमे की बात करें तो समझ नहीं आएगी, और इसके बरक्स आप जरा दूसरे काम करके देख लें तो कैसे हो सकता है? इसी तरह देखिए कि इंसान के पीछे उसका जिक्र खैर भी होता है, बुरा नाम भी होता है। हम में से हर एक ज्यूम करे कि जब मैं सामने नहीं होती तो लोग मेरा जिक्र कैसे करते होंगे। हर एक की कोई ना कोई एक फेमस थिंग होती है ना, कोई इस्लाम से फेमस होता है, ये खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, हाँ, किसी के बारे में लोग कहते हैं ये कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं, कुछ के लिए लोग कहते हैं ये जब किसी गैदरिंग में आती हैं तो रौनक लग जाती हैं, बहुत हंसती हैं और बोलती हैं, ऐसा होता है ना। किसी को देख के लोग कहते हैं नहीं ये बहुत गीबत करती है, मशहूर होते हैं लोग, ये बहुत चुगलखोर है, इसके साथ ज़रा सोच के बात करना। हर एक एक अपना तारुफ होता है ना, हम में से हर एक अपना सोच ले। क्या आप अपने बारे में सोचते हैं कि आपको लोग क्या सोच समझते होंगे? पता है ना, हर एक को पता होता है। हम किसी से कहें ना कहें हमें सब पता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो ज़रा एक लम्हे के लिए हम सब सोचें कि कल क़यामत के दिन सारे लोग, अगले भी, पिछले भी, प्रॉफिट्स भी, कंपेनियंस भी, और जितने बड़े बड़े लोग गुजरे वो सब मौजूद होंगे, और हमारा नाम आएगा कि ये तो फलां थे, इनका तो ये नामे अमाल है। हम जब दुनिया में अपना काम करते हैं और वो लिखे जाते हैं, कल क़यामत के दिन खुलेंगी वो चीज़ें। अल्लाह ताला कहते हैं वो कुल्ला शेइन अहसैनाहू फी इमामे मुबीन, हर चीज़ हमने एक रोशन किताब में खोल रखी है, यानी एक स्क्रीन है बड़ी सी और उसके ऊपर होंगे। आज के दौर में तब देखिए कंप्यूटर ने सारे मसले ही हल कर दिए। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ फीड कर दें, फिर आप 10 साल बाद सिर्फ एक कोड लगाएंगे और खोलेंगे और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी ना।
आप कहीं ट्रैफिक में स्ट्रक हो जाएं, आईएनएस पे चले जाएं, सिर्फ वो आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पूछेंगे और आपकी ये चीज़ भी खुल के आ जाएगी कि आप कब आए थे, कब गए थे, क्या किया था, आपका क्या नाम है, मौजूद है ना। तो अल्लाह ताला के तो इंतज़ाम इससे बहुत बड़े हैं, वो तो इससे ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम करता है कि क़यामत के दिन इंसान की तमाम चीज़ें खोल के सामने रख दी जाएंगी कि ये करते थे, ये दुनिया में आने के बाद इन्होंने ये किया, और इंसान को उसका नामेमाल दे दिया जाएगा कि ये जो तुम ज़िंदगी में करते थे ये वहाँ तुम्हारे सामने होगा। फिर आप देखिए कि ख़ास तौर पे चूँकि हमने बात की है कि बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, और ये फ्यूचर कौन मुतय्यन करता है? आज हम अपने बच्चों के लिए जितनी एफर्ट्स करते हैं, अपने यंग्स को जिस तरह रेस करना चाहते हैं, इसी के बेस पे उनका फ्यूचर बनता है ना। एक डॉक्टर बनने कितना टाइम लगता है? मैंने किसी और जगह पूछा तो 25 ईयर्स उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनने में लगे। मैंने कहा आलमोस्ट कितनी किताबें आपने पढ़ी होंगी? तो हंड्रेड्स बुक्स पढ़ी। मैंने कहा आपने कितनी मनी लगी होगी टोटल? कहने लगी मोर देन $200,000, $200,000 से ज़्यादा लगा होगा। फिर क्या बने? एक डॉक्टर, एक फील्ड है स्पेसिफिक। और बहुत सारे लोग कभी जॉब नहीं भी करते, बाद में प्रैक्टिस नहीं करते। जब एक चीज़ दुनिया के एक फील्ड के लिए हम इतना माल लगाते हैं, तो जब रिलीजियसली जब हम एक दीन की बात पे आते हैं तो उस वक्त हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? अगर हम इस बात को सुनने के बाद अपने लिए ये चीज़ कमिट करें कि अब मुझे क्या करना है, क्या करूँ मैं, क्या सिर्फ ये बात सुन के उठ जाना है, क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक अच्छा चेंज नहीं आना चाहिए? और उस चेंज की एक सिंपल, एक बेसिक थिंग क्या होती है कि हम अल्लाह की किताब को समझ लें कि कुरान पाक की कितनी आयतें हैं। मेरा अल्लाह सभी को पता होती हैं, आलमोस्ट 6,666, चले 114 सूराज हैं। कितनी आयतों को हम अपनी ज़ुबान में समझते हैं? वैसे नहीं आती ना, सामने तफसीर, और हर वक्त तफसीर की किताबें सामने तो नहीं होती, ना तर्जमे वाली सामने होती हैं, और बग़ैर पढ़े सिर्फ तर्जमे वाले कुरान से भी समझ नहीं आता। ऐसी है ना, सभी का यही हाल है ना। तो क्या ज़रूरत है इस बात की कि हम कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ जोड़ें? क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो उसका कोई सलूशन होना चाहिए ना। सिर्फ बीमारियों को डायग्नोस कर देना यही तो काफ़ी नहीं है ना। तो मुझे तो हर चीज़ का एक ही हल दिखता है कि अगर हम एक दफ़ा इस किताब को अपने लफ्ज़ों में समझने लग जाएं, ये किताब हमें अपनी लगने लग जाए, इसके साथ हमारा मामला जुड़ जाए। लेकिन आप देखिए कि एक बड़ी, एक जिसको कहना चाहिए कि मोहब्बत के साथ ही, हम तो कह सकते हैं कि अल्लाह के कलाम के साथ अगर हम सब जुड़ जाते हैं, कहीं भी जुड़ें, अगर आप किसी चीज़ को हक समझते हैं, जिसकी बात आपको समझ आती है, जिसका अकीदा ठीक है, जो आपको बग़ैर किसी फिक्री वैसों में पड़े हुए या किसी मसलक के साथ जोड़े आपको सीधा सीधा अल्लाह ताला की बात सिखाता है, ज़रूर सीखिए। लेकिन अगर हम बग़ैर किताब सीखे दुनिया से चले गए, कल क्या होगा? हम ज़िंदगी भर कुछ और करते रहें और मौत के वक्त कलमा ज़ुबान पे आ जाए, ये कैसे हो सकता है? जो चीज़ दिल में होती है ना, वही ज़ुबान पे आती है। मैंने देखा है मुसलमानों में इस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश पाई जाती है कि अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब कराना, लेकिन ये जहन में रख लीजिए कि ये कलमा अचानक नहीं मिलता। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोमिन के दिल में अल्लाह की बड़ाई होती है, वो अल्लाह को याद करता है, जब मलकुल मौत को देखता है तो खौफ की वजह से वो चीज़ उसकी ज़ुबान पर आ जाती है। जैसे आप किसी चोर को देखें तो आप एकदम बोलने लगते हैं ना, चाबियाँ इधर रखी हुई हैं, ये ले लो, मेरी जान छोड़ दो, खौफ में इंसान सच बोलता है। इसी तरह जब इंसान खौफ ज़दा होता है तो उस हाल में वो ऐसी बातें बोलने लगता है। कलमा दिल में आता है, अमल में आता है। हम भी अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हम दुनिया में कोशिश करें। रास्ता आज हमने मुंतखब करना है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक अल्लाह की किताब का रास्ता, अल्लाह की पसंद का रास्ता, और एक अपनी मर्ज़ी का रास्ता, ख्वाहिशों का रास्ता। इस दुनिया को हम कितना भी सजा लें, आखिर क्या है, कल हमारे साथ कोई जाएगा? अल्लाह ताला कहते हैं माँ कदम हूँ व आसार हूँ, तुम्हारे पीछे तुम असर छोड़ो। कोई कहे मुझे अपना बेडरूम बड़ा पसंद है, मरने के बाद मुझे इसी में दफन करना, कोई कर सकता है दफन? बेडरूम तो छोड़ दीजिए, लोग हमें हमारे बैकयार्ड में भी दफन नहीं करेंगे, उनको तो हमसे खौफ आएगा। एक रात डेड बॉडी घर में रह जाए, उस घर से खौफ आने लगता है। आप एक जिंदा इंसान है, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता भी रूह निकल जाए, अकेला बंदा उस डेड बॉडी के पास बैठते हुए डरता है। कई दिन तक मौत के बाद वाले घर में से लोगों को खौफ आता है कि यहाँ से किसी की डेथ हुई है। तो आखिर हमने तो एक दिन सब छोड़ के जाना है ना। क्या हम जो इस दुनिया को जो इतनी मेहनत करके सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, ठीक है अल्लाह ने अगर दिया है, हलाल और जायज़ तरीके से करने में कोई कबाहत नहीं, अगर ये चीज़ें इंसान को अल्लाह के रास्ते से ना रोकें, लेकिन इन चीज़ों के रुकावट बनने के बाद क्या हम चाहेंगे कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं, मलकुल मौत आए और हम कहें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर स्कूल के लिए हम जाते हैं, 20-25 साल एक डिग्री लेते हैं, एमए करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उसका एंड क्या है? एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट, किसी एक फील्ड की स्पेसिफिकेशन, जॉब मिल जाएगी, $2,000-3,000 महीने के आने लगेगा। वो ठीक है, वो सब अच्छा था, लेकिन क़यामत के बाद अल्लाह ताला पूछेगा, मरने के बाद अल्लाह ताला पूछेंगे, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे कि बताओ तुम आगे क्या लेके आए हो, यहाँ के लिए तुम्हारे पास क्या है? फिर क्या कहेंगे हम? बहुत कुछ था, वो इधर तो नहीं है, वो दुनिया के लिए था। अब देखिए कि जैसे दुनिया में कोई चीज़ होती है ना, तो उसकी वैलिडिटी होती है, एक एक्सपायरेशन डेट होती है, इसके बाद वो चीज़ एक्सपायर हो गई है। कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, आप उसको फेंक देते हैं ना। और मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है जब कभी कोई चीज़ बग़ैर इस्तेमाल के फेंक जाए। मैं सोचती हूँ ये चीज़ सिर्फ इसीलिए आई थी दुनिया में, इतनी मेहनत से बनी और किसी की गफलत का शिकार हुई और ट्रैश में चली गई। क्या हम भी ये चाहेंगे अपने बारे में? अल्लाह ने हमें इतनी मोहब्बत से बनाया, इतने प्यार से बनाया, इतनी हसीन दुनिया हमें दी, इतनी नेमतें दी, कुछ किए बगैर चले जाएंगे? क्या हमारा दिल नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई काम करके जाएं कि हमारे बाद भी कोई अच्छा काम करे तो हमें उसमें अजर मिले? हमारी कब्रों में क्या होगा? हमारे पीछे कौन क्या दुआ करेगा? क्या हम सिर्फ नफ्स के और ख्वाहिशों के तकाजे पूरे करते रहेंगे? हम अपने बच्चों की मैचिंग पूरी करते रहें, उनके कमरे सजाते रहें, उनको अच्छे से अच्छे कपड़े लेके देते रहें, दुनियावी तालीम देते रहें, लेकिन अगर हमने इनको दीन ना दिया, कल ये क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे। एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन जब नामे अमाल तुले जाएंगे तो एक माँ का हिसाब होगा, उसके अगले पिछले मामले खोल दिए जाएंगे। कुछ गफलत थी, कुछ मामला था, लेकिन सारा कुछ जमा कर करा के आखिर कहा जाएगा इसको जन्नत दे दो। अब वो जन्नत में जाने लगी है, उसके बाद बेटी का हिसाब खुल रहा है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना नमाज ना कोई दीन, उसको के बारे में होगा इसको जहन्नुम में भेजो। फिर वो बेटी कहेगी माँ को, अल्लाह ताला से कहेगी कि अल्लाह ताला मेरी माँ को भी रोक लें ज़रा, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अच्छा भी कर लो, क्या बात है? फिर वहाँ रिवायतों में आता है कि माँ बेटी का वो झगड़ा होगा कि जैसे झगड़े कभी दुनिया में नहीं हुए होंगे। फिर वो कहेगी कि माँ बता तूने मेरे लिए क्या किया, आप नमाज पढ़ती थी, आप मुझे नहीं कहती थी, मैं आपके सामने ख़राब गलत कपड़े पहनती थी, आप मुझे नहीं टोकती थी, मैं गलत काम करती थी, आप मेरी मोहब्बत में मजबूर हो जाती थी, आप बताएं कि मैं क्या करूं? अरे एक वक्त आएगा कि फरिश्ते कह रहे हैं माँ को कि जन्नत में जा सकती हो, लेकिन बेटी कहेगी मैं इसको नहीं जाने दूंगी, और वो उसको अपने साथ पकड़ के जहन्नुम में ले जाएगी। हर इंसान सोचे, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जब हम कोई बात कहते हैं तो बच्चे आगे से कहते हैं कि भाई आप तो खुद सब कुछ कर चुके, अब हमारी बारी आई है तो आप हमें ठोक रहे हैं, आपने तो सारे शौक़ पूरे किए, आप तो स्लीवलेस भी पहनते थे, आप तो ये भी करते तो वो भी करते थे, तो फिर ऐसे बच्चों के साथ क्या करें? तो मैं ऐसे वक्त में एक ही जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ आप घर जाएं, अपने बच्चों से माफ़ी मांग लें, कन्फेस कर लें कि हाँ बच्चों हमने तुम्हारा हक नहीं अदा किया, हमें खुद नहीं पता था, हम खुद भटके हुए थे, तुम्हें क्या कहते, तुम भी हमें माफ़ करो और आओ मिल के काम करते हैं, तुम भी अल्लाह की किताब सीखो, हम भी सीखते हैं। जब तक फैमिली बेस्ड पे घरों में से दीन का काम नहीं शुरू होगा, अल्लाह की किताब नहीं खुलेगी, तब्दीली नहीं आएगी। जिस दौर में मुसलमान बस्तियों में गए उसकी वजह क्या थी? किताब से दूरी। आज आप बड़े बड़े सेमिनार्स बुला लें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस कर लें, कन्वेंशन कर लें, एक ही हल है सारी बातों का कि जिस दिन मुसलमान इस किताब से जुड़ जाएंगे उनकी ज़िंदगी इस किताब के मुताबिक होगी, फिर हालत बदलेगी। हम देखें किताब का लफ्ज़ हमें पढ़ना ना आए, समझ हमें ना आए, अल्लाह के नबी के साथियों के नाम हमें ना आए, उनके तरीके हमें ना आए, क्या हमें हक है कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाएं? क्या ये हमारा इस्लाम होगा? हम तो जो मर्ज़ी अपना नाम रख लें, मतलब कोई डॉक्टर हो और आप कहें कि आप डॉक्टर हैं, चले मुझे 10 डिजीज़ के नाम बताएं, ओके ये तो नहीं आता, 10 मेडिसिंस के नाम बताएं, ये भी नहीं आता, कोई 10 हॉस्पिटल्स के नाम बताएं, आप मुझे बताइए कोई इसको डॉक्टर मानेगा? हर बंदा अपने फील्ड का स्पेसिफिक होता है। अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होना कोई टाइटल नहीं है, मुसलमान होना एक टाइटल नहीं, एक स्पेसिफिक जॉब है। जिस तरह कोई डॉक्टर प्रैक्टिस ना करे आप उसको डॉक्टर नहीं कहते, इसी तरह जब तक मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होगा आप उसको मुसलमान नहीं कह सकते। तो लिहाजा अगर यहाँ बैठ के हम वाकई अपने दिल से इस चीज़ को महसूस करें, इसकी अहमियत को, तो अल्लाह ताला चाहेगा तो रास्ते भी निकल आएंगे। बच्चों को मोटिवेट कैसे करें? तो इसका जवाब यही है कि हम खुद मोटिवेट हो जाएं, अमल शुरू करें, हम अपनी पिछली ज़िंदगी पे शर्मिंदगी हो और बच्चों को फ्रेंडली बेस से लेके चलें। देखिए कि हम अमूमन उल्टा काम करते हैं, छोटी उम्र जो होती है ना बच्चे की, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल तक की, ये सख्ती की उम्र होती है। यानी सख्ती से मीन ये कि उनको असूल सिखाने, उनकी अच्छी आदत क्रिएट करनी, उनको हर बात पे टोकना रोकना, ये जो होती है। फिर जब बबच्चे थोड़े से शौर में आते हैं ना, जैसे 8, 9, 10 साल, बल्कि 12, 13, तो ये उनके साथ दोस्ती के होते हैं, फ्रेंडशिप करें, आप उनसे मोहब्बत की बात करें, वो आपकी करें, वो आपकी सुने। हमारे यहाँ आजकल क्या प्रॉब्लम हुआ कि छोटे बच्चों को तो हम माशाल्लाह ऐसे पालते हैं कि जैसे वो माजरत के साथ के इंसानों के बच्चे ही नहीं हैं। वो खा रहे हैं तो खा रहे हैं, वो पहन रहे हैं तो पहन रहे हैं, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनके मुंह से बात निकली है तो वो पूरी करनी है, वो माँ बाप के गले में नाखून दे दें तो उसको भी बर्दाश्त करेंगे। और जब बच्चे 10-12 साल के होते हैं तो हमारी टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी होती है, तो फिर हर बात पर उनको डांटने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। जैसे मसला मेरे पास एक अमूमन जो एक केस आता है वो क्या है, यंग बच्चियां होती हैं ना, लड़कियां 17-18 साल की, फिर माएँ सबके सामने आके, मुझे तो समझ नहीं आती कि माओं में समझ क्यों नहीं है, सबके सामने आके आप कहते हैं इसको समझाए ऐसे कपड़े ना पहना करें, जीन्स ना पहने, टाइट्स ना पहने, दिस एंड दैट। तो मुझे इतनी वो माँ कम अकल लगती है, मैं कहती हूँ कि ये बच्ची जिसके सामने आप मुझे कह रहे हैं, अगर मैंने कह भी दिया तो वो मानेंगी? उसने तो अपना दिमाग बंद कर लिया, रिएक्शन में आ गया इंसान। और दूसरी बात है कि ये कहाँ से हुआ, क्या ये आज पहला दिन है इसका इन कपड़ों को पहनने का? जब ये छोटी बच्ची थी, जब ये 3, 4, 5 साल की बच्ची थी, तो आपकी गैरत तब कहाँ थी? फिर तो आप शौक शौक से उसको स्लीवलेस बाजू के फ्रॉक पहनाते थे, फिर तो 7 साल का लड़का पूरी पैंट पहनता है और 7 साल की लड़की को आप नंगी टांगों पर छोड़ते हैं कि उसको गर्मी बड़ी लगती है। मैंने तो लड़कों को नहीं देखा स्लीवलेस कमीज़ें पहनते हुए या आधी पैंटें आधी पहनी हो, लड़कियों को क्यों गर्मी लगती है? डीप नेक कपड़े आप बच्चों को पहनाएं, जब उनकी गैरत ख़त्म हो गई, जब उनकी हया ख़त्म हो गई, आप कैसे कह सकते हैं कि एकदम ये नेक परवीन बच्ची बन जाए? ये गैरत तो तोड़ने वाले माँ बाप होते हैं। अगर हम चाहते हैं तो बचपन से उनको रोकें। छोटी बच्ची, मेरी इसी ट्रिप में भी किसी से बात ही, 3 साल की उसकी बच्ची है और कहने लगी कि ये मेरे से लड़ लड़ के जीन पहनाती है और मुझे फील हो गया कि इसको अब इसकी आदत हो गई, शलवार देती हूँ तो नहीं पहनती और जीन कहती है पहनो। तो मैंने इसी वक्त पे सोच लिया कि इसको रोक लूँ वरना तो ये बाद में मेरे काबू में नहीं आएगी। तो लिहाजा बचपन से अच्छे तरीके से किया जाए। और हकीकत है कि जब वाकई जब हमारा लिबास ख़राब होता है ना तो बाकी दीन भी ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने कुरान पाक में अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की कहानी पढ़ी हो तो शैतान ने जो पहला हमला उन पर किया था वो क्या किया था? उनके कपड़े उतरवाए थे। शैतान की तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है कि इंसान बेलिबास हो जाए। पहले वो कम कराता है, टाइट कराता है, फिर उतार ही देता है, फिर इंसान को गैरत ही नहीं रहती। और वाकई बाद दफ़ा तो लिबास ऐसे दिखते हैं कि जिसको पहन के फील होता है देख के कि लिबास है ही नहीं। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ बास लोगों के लिबास देख के, मैं कहती हूँ जानवरों को तो अल्लाह ने लिबास पहनाया था ना उनके जिस्म के साथ, बॉडी फिगर दिखते हैं, सब कुछ होता है। इंसान ने भी वैसे ही अपने ऊपर खाल चढ़ा ली, लिबास तो आप कह ही नहीं सकते, वो खाल है। लेकिन एक फ़र्क फिर भी है, जानवरों को अल्लाह ने 4 टांगे दी कि वो नीचे झुके रहें, उनके प्राइवेट पार्ट्स फिर भी छुपे हुए हैं, इंसान खड़ा होकर दिखाता है कि मुझे एक एक अंग से देख लो। आपका क्या ख्याल है कैसे लिबास में पहनी हुई पड़ी हुई नमाजों में खुशू होगा? क्या ऐसा लिबास देख के शैतान खुश नहीं होगा? अगर वाकई हम चाहते ना कि हमारे अंदर चेंज आए तो हमें अपने ड्रेस कोड को देखना होगा। ठीक है, अंदर ईमान आता है तो ड्रेस को ठीक होने लगता है, लेकिन आपका सवाल यह है कि जब एक इंसान बिगड़ चुके हैं तो क्या करें। यानी मिसाल है कि अगर सुनने वालों में से किसी को ये फील होता है कि मैं क्या करूं, मेरी कहां से चेंज आए, तो आप देखिए कि ज़ाहरी हुलिये को हम ठीक करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मतलब जैसे मैंने कही दफ़ा क्लास में जो लड़कियां आती हैं कभी तो अबाया पहनती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जब किसी मॉल में जाती हैं तो आप इस हुलिये में जा सकती हैं अबाए में, तो कुछ कहती हैं हाँ, कुछ कहती हैं हम नहीं जा सकते, हमें शर्म आती है। कुछ लोग यानी बाहर अपने बहुत ऐसे आम लिबास में होते हैं, लेकिन जब मस्जिदों में आते हैं तो अबाया पहन के आते हैं। ये तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने तो जो दीन दिया है, जो दिया वो तो हर जगह एक जैसा है। किसी के दीन को आप इसी से परख सकते हैं कि आप उसको बाहर देखें, अंदर देखें, जहां देखें आपको उसका एक ही रूप दिखे। साल पहले देखें, साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, उसमें बेहतरी तो हो सकती है लेकिन ख़राबी नहीं आनी चाहिए ना। तो बच्चों को मोटिवेट करना है प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह की किताब के करीब कीजिए। अब देखिए अंदर ईमान आ जाएगा ना तो खुद ब खुद तब्दीलियाँ भी आएंगी। बाहर से नहीं आप थोप सकते, चेंज पहले अंदर आती है। जब अंदर इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होता है कि मैंने गलत काम नहीं करना, मैं गलत काम करूंगा तो मेरा रब मुझसे नाराज़ होगा, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी नाराज़गी का डर, ये दो चीज़ें अगर दिलों में डाल दें, यकीन करें कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ यंग्स हैं वो ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, आज के यंग्स ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम उन तक पहुँचते कैसे हैं। किताब खोलने ज़िंदगी में इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत है। यहाँ से एक नियत लेके जाएं, एक घंटा हफ्ते में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई फैमिली टाइम में से ऐसा निकालना है जिसमें पूरे घर वाले बैठ के इकट्ठे किताब सीखेंगे। बस आप जैसे देखें माएँ हैं और बहुत सारी मेरा लेके हाउस वाइफ्स भी हैं ना आप लोगों में से, अब वीकडेज में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन आप क्लास ले सकते हैं, खुद दिन में लें, लिखें, नोट्स लें। जब आप खुद कोई काम करते हैं तो दूसरे को कहना भी आसान हो जाता है ना। फिर उसके बाद आप रात को डिनर पे, खाने पे या किसी भी वक्त में उसी में से चंद चंद बातें जो आप समझते हैं कि एक मोटिवेशनल है, कोई हदीस, कोई आयत, वो घर में शेयर कर लें। आप खुद फील करेंगे कि आपके घर का माहौल चेंज हो रहा है। फिर बच्चों के साथ वीकेंड पे, और आजकल तो कितना आसान है, इतने आसान मीन्स हो चुके हैं। आप देखिए कि पहले तो होता था लोग कहीं जाते थे तो इल्म सीखते थे, आप तारीख में पढ़ते हैं तो कितना रिवाज था ना, माएँ बच्चों को बचपन में भेज देती थी उलमा के पास, जुदाइयाँ काटती थी, बाद दफ़ा मदरसों में लोग भेजते थे। और आज तो हमारे घरों के अंदर दीन आया हुआ है, सिर्फ एक बटन दबाने की देर है। एक बटन दबाते हैं हम दिन में कई बार अल्लाह की नाफरमानी के लिए, और एक बटन दबाते हैं हम अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए। क्या दोनों में फ़र्क नहीं है? माँ कदम हुआ सारा हूँ, मैं सोचती हूँ कि आज हमारी जान चली जाए, हमने अपने घर में जो गुना की चीज़ें जमा की हुई हैं उसका बुरा सदका जारिया ज़्यादा आएगा, या नेकी की चीज़ें जो जमा की हैं उसका अच्छा सदका जारिया आएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था, इज़ा मातल इंसान इनकते अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल नामे अमाल मुनकते हो जाते हैं। स्टॉप, फिनिश, नो मोर इल्ला मिन सलास, 3 चीज़ें जो मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा देती हैं। वलदुन सालेहुन यदू लहू वादो, नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करेगी। फिर दूसरी चीज़, इल्मुन युन्तफ़ौ वादो, कोई इल्म जो किसी को सिखा गया, कोई बता गया, बाद में उसको नफ़ा देगा। और तीसरी चीज़ है सदकतुन जारियतुन, कोई सदका जारिया की चीज़, अच्छी चीज़ जो किसी को ले दी, अपने पास रखी, सीखी, हत्ता कि वो कुरान जिसे इंसान पढ़ता है वो भी जब तक क़यामत तक पढ़ा जाएगा उसको उसका अजर होगा। अब बताइए कि ये 3 चीज़ों की बेस पे हम अपने आप को देख लें कि हमारे बाद हमारे कितने को अमल जाएंगे। पहली बात है औलाद, क्या औलाद को हमने सिखा दिया? एक लम्हे के लिए इंसान सोचे ना तो तन्हा होने लगता है कभी कभी। मैंने एक मौके पे बच्चियों को पूछा, सूरत बनी इसराइल की आयत पढ़ रहे थे तो उसमें एक दुआ आ गई कि रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम कर जिन्होंने मुझे पाला जब मैं छोटा था। मैंने इनसे कहा कि क्या आप लोगों ने ये दुआ कभी पढ़ी है? कहने लगी नहीं पढ़ी। पता है कहाँ? नहीं पता। मैंने कहा खोल लो और पढ़ो, कुरान खुलवाए पढ़ाए, यकीन करें चंद एक के सिवा किसी को ठीक लफ्ज़ भी पढ़ने नहीं आ रहे थे, तर्जमा नहीं आता। मैंने कहा आप लोगों ने कभी ये दुआ नहीं पढ़ी? कहने लगी नेवर, नोबडी टोल्ड अस। मुझे उस दिन लगा कि इनके माँ बाप दुनिया के सबसे ज़्यादा खाली दामन माँ बाप हैं, और शुक्र अल्लाह का ये मेरी औलाद नहीं है। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर सकते। आप देखिए, दुनिया में हमारी बात ना माने, कल हमारी मौत का गम इनको हाफिज बना देगा, आलिम बना देगा। आज तो हम इनको दुनिया की चीज़ें सिखाते रहे, हमारे मरते ही क्या ये मस्जिदों के इमाम लग जाएंगे? एक बच्चा मैंने ऐसा देखा था पाकिस्तान में, बाप सारी ज़िंदगी बच्चों की तरबियत पर रहे, औलाद हाफिज हुई, और जब बाप का जनाजा तैयार था तो शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उलमा में से लोग मौजूद थे जनाजा पढ़ाने के लिए, लेकिन जवान बच्चा कहने लगा मैं पढ़ाऊँगा अपने बाप का जनाजा। कहा ठीक है, इससे अच्छा और क्या, जो अपने के दिल में दर्द होगा वो किसी और के क्या होगा। और उसके बाद वो बच्चा था और उसके बाप के लिए दुआएं थी, इस तरीके से रो रो के वो दुआएं मांग रहा था कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, पूरे इलाके के अंदर से गूंज और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी कि तड़प तड़प के उसने अपने बाप के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे बाप पर रहम कर दे। हमारे बच्चे क्या करेंगे, कोई मदर डे का गाना गाएंगे आके? उनको तो ये भी नहीं पता गुसल कैसे देना है, उनको तो ये भी नहीं पता कफन कैसे देना है, हमने सिखाया ही नहीं। हमें तो खौफ आता है, हमें तो डर लगता है मौत की बात करते हुए। क्या ये हर मुसलमान माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं कि बिठा के बच्चों को सिखाओ, बेटियों को भी सिखाओ कि ऐसे गुसल देते हैं, और बेटों को भी सिखाओ ऐसे दफन करते हैं, कब्रिस्तान में जाने के आदाब इनको नहीं आते, दूसरे ही करेंगे ना हमारे काम। और जहाँ हम बैठे हैं अगर कोई ना मिला तो कई के दिन तक मैयत पड़ी रहेगी कि कोई नहाने वाला नहीं मिला, कोई दफनाने वाला नहीं मिला। हमने क्या पाया, सिर्फ चंद डॉलर्स? एक डॉलर साथ नहीं जाएगा, एक नाक की कील नहीं साथ जाएगी, हाथ के अंदर पहने हुए रिंग्स तक उतार ली जाएंगी कि ये दे के जाओ। हमने क्या किया, जब दुनिया में मेहनत करते हैं जो माँ बाप, जो तहज्जुदों में उठते हैं, जो फजर पे उठते हैं, जो जमात से पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला बाद में उसके फल पाते हैं। मुझे ऐसे किसी का ख्याल आ रहा है कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपनी औलाद के मामले में, कि ख़ानदान के लोग उनको बुरा भला कहते थे, ये बड़ी सख्ती करते हैं, बड़े ऐसे हैं। और आज आपको पता है कि रमज़ान में जब तरावियाँ होती हैं 27 हाफ़िज़े कुरान है उनके बेटों और पोतों में से, और आज लोग उनका नाम लेकर रश करते हैं कि वाह क्या उनकी कब्र के अंदर से सदका जारिया जाता होगा। ये कैसे गया, मेहनत की ना, आज मैं भी करूँगी तो मुझे भी मिल जाएगा। आप दुनिया में 20-25 साल पढ़ाते हैं ना बच्चों को, मेहनत करते हैं तो वो पहुँच जाते हैं उस दर्जे पर, अगर हम इस पर कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा, और अगर नहीं है, अगर हम इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते तो फिर कल पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। फिर इसी तरह आप देखिए कि दूसरी चीज़, इल्म युन्तफ़ा बादहू, हमें तो खुद इल्म नहीं था, हम दूसरों को क्या सिखाते? क्या हमें खुद कुरान से ही पढ़ना आता है? 5 हक है ना कुरान के, उस पर ईमान लाओ, उसको ठीक तरह पढ़ो, उसका माना मफहूम समझो, फिर उस पर अमल करो, और 5वें कि उसको लोगों तक पहुँचाओ। ये एक कोर्स है मुसलमान का, यानी जैसे एक सिलेबस होता है ना, तो 5 पॉइंट्स हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। हर एक मेरे समेत अपने आप को चेक कर ले, इन 5 में से मैंने कौन सा हक कुरान का दिया और कौन सा नहीं दिया। और आपको पता है कि हकूक राइट्स का मामला बड़ा सीवियर है, कल अल्लाह की ये किताब हमसे खड़े होकर मैदान महशर में पूछेगी, अल्लाह ये 5 हक इससे भी ले के दे, इससे भी ले के दे, इससे भी ले के दे, इनसे ले के दे। कोई तो 5ों दे देगा, कोई 4 पे अटक जाएगा, कोई 3 पे, और किसी को तो पढ़नी भी नहीं आती होगी। सिर्फ हम अपनी अरबी और इंग्लिश पढ़ने की रफ्तार को देख लें, फ्रीक्वेंसी को देख लें, कितने फ्लुएंट हम वो पढ़ने में और कितने उसमें। दुनिया में किसी की बात आप तोड़ तोड़ के सुनाएं तो उसको कितना गुस्सा आता है, रब का कलाम जब हम गलत मलत पढ़ते होंगे तो उसको कैसा लगता होगा। और फिर जबकि इतनी नेमतें, इतने मीन्स हैं, एक एक चीज़ कल हमारे हक में पूछेगी कि बताओ तुमने इसका इस्तेमाल किया था कि नहीं किया। और तीसरी चीज़, इस हदीस की रोशनी में सदका जारिया की, तो सिर्फ आज जाके इस नज़र से किचन से लेके ड्राइंग रूम तक एक एक घर का कोना खड़े होके देख लें और लिस्ट बना लें, मेरे घर में कितने सदका जारिया खैर के छोड़ के जा रही हैं और कितने शर के। जितनी गानों की कैसेट्स हैं क्या उतने दर्स के कैसेट्स भी हैं? जितनी सॉन्ग्स की सीडीज है मेरे पास क्या उतनी कुरान की तिलावत की सीडीज भी हैं मेरे पास? जितने अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ें हैं क्या उतनी फर्माबरदारी की भी हैं? आज पता चलता है, यहाँ से उठने से पहले पता चलता है कि हमारा क्या मुकाम है। कभी बात हो के कहाँ जाएंगे, जन्नत में या जहन्नम में, तो लोग कहते हैं हमें क्या पता, अल्लाह ने जहाँ भेजना भेज देगा। नहीं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है हमने कहाँ जाना है। क्यों? कि दुनिया में कोई काम होता है तो उसके पहले असरात होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। दुनिया में दिखता है, आप कोई औरत प्रेग्नेंट होती है उसके सिम्टम्स दिखते हैं, आपको कल पाकिस्तान जाना है, आज आपके घर की हालत से आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं कि घर में कोई सफ़र के असरात हैं। खुशी वाला घर दूर से पहचाना जाता है, गमी वाला घर दूर से पहचाना जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जन्नत का राही हो और उसको पता ही नहीं कि वो जा रहा है, उसकी भाग दौड़ बताती है, उसका अपने वक्त का सही इस्तेमाल बताता है। वो तो खुद पूछ पूछ के रहता है कि बताओ मैं क्या करूं, मैं अपने माल का क्या करूं, मैं अपने वक्त का क्या करूं, और जहन्नमी की दौड़ बताती है, नॉन स्टॉप ज़िंदगी गुजारना बताता है, ब्रेक से पांव उठाना बताता है कि ये जहन्नम के घड़ों में घिरने वाला है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आँखें खोल दे। इससे पहले कि हमारी आँखें बंद हो जाएँ, हम इस ज़िंदगी के अंदर सोचें कि कल मेरे लिए क्या होगा। और इसके लिए अगर हम वाकई एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकें कि अपने आप को सपोज़ करें मैदाने महशर में खड़ा हुआ, क़यामत का मैदान है, हम सब खड़े हैं, हर एक ने खड़े होना है ना, और अकेले अकेले इंडिविजुअल बेस पे, ना माँ ने पास खड़े होना है ना बाप में, और हर बंदा अपने अपने सवाल देने के लिए वहाँ खड़ा है कि बताओ करके क्या आयो।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।